नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। सरकार ने संचार साथी ऐप की बढ़ती स्वीकार्यता के बीच मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों के लिए ऐप को पहले से इंस्टॉल करने को अनिवार्य न करने का फैसला लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नागरिक जब चाहें इस ऐप को हटा सकते हैं और इस ऐप का उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के अलावा और कोई कार्य नहीं है। इस बीच लोकसभा में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष के जासूसी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संचार साथी ऐप से जासूसी ना तो संभव है और ना ही होगी। नागरिक वित्त साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली के कारण 23 लाख से अधिक शिकायतों में 7000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बचाई गई है। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि वित्त धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए ये प्रणाली 2021 में शुरू की गई थी। ऑनलाइन साइबर शिकायत दर्ज करने के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 संचालित है। लोकसभा में केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये कोई नया कानून नहीं है और न ही कोई अतिरिक्त कर है। उन्होंने कहा कि ये उपकर नहीं है बल्कि ये एक उत्पाद शुल्क है जो जीएसटी लागू होने से पहले लगा करता था। विधेयक के अंतर्गत कच्चे तंबाकू और बने हुए तंबाकू से निर्मित उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ेगा। भारत को वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। ये अंतर सरकारी संगठन पूरे विश्व में लोकतंत्र की स्थापना और बहाली का समर्थन करता है तथा सहयोग देता है। आज स्वीडन के स्टॉकहोम में सदस्य देशों की परिषद की बैठक के बाद ये घोषणा की गई। भारत ने वर्तमान अध्यक्ष स्विट्जरलैंड का स्थान लेगा। संस्थान ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक पोस्ट में इस चयन की जानकारी दी। भारत वर्ष 2017 से ही अंतर सरकारी लोकतंत्र और निर्वाचन संस्थान का सदस्य रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक के लिए आज भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। दो दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रूस के राष्ट्रपति के सम्मान में भोज का आयोजन करेंगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी से बात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने भारत ओमान द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए भाजपा के राष्ट्रीय सह प्रभारी पी सुधाकर रेड्डी ने थिरुपनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिकेय दीपम जलाने के मुद्दे पर हुई अफरा तफरी को लेकर मौजूदा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से न्यायिक जांच की मांग की है। श्री रेड्डी ने डीएमके सरकार पर भक्तों द्वारा पीढ़ियों से शांतिपूर्वक निभाई जा रही सदियों पुरानी हिंदू रस्म के खिलाफ चुनिंदा और बेहिसाब पाबंदियां लगाने का आरोप लगाया। दक्षिण अफ्रीकी मादा चीता वीरा और उसके 2-10 महीने के बच्चों को आज श्योपुर जिले के कुनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। चीतों को आज इंटरनेशनल चीता डे के मौके पर एक खास कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव छोड़ेंगे। 5 साल की मादा चीता वीरा फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों में से एक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 3 साल पहले मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट चीता शुरू हुआ था। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम को सेंटियागो में जूनियर महिला विश्व कप अभियान के अपने दूसरे मैच में जर्मनी से 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। भारत का अगला मैच कल आयरलैंड से होगा। मौसम विभाग ने आज आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ स्थानों पर भी तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।